कलर परसों। कृष्ण के लीलाओं के विविध दृष्टिकोणों का वर्णन किया साधक की दृष्टि से, अत्यंत बहिर्मुख साधक, अनर्थग्रस्त साधक, रागानुगा और रागात्मिका का भाव, और उसको हमने दिखलाया जो उतना जैसे बहिर्मुख व्यक्ति को भगवान किस तरह से उनको पवित्र करते हैं, उनके सारे अनर्थों को, उनके क्लेशों को, उनके अपराधों को, उनके पुण्य को भी समाप्त कर किस रूप से किसी किसी को चार प्रकार की मुक्तियां और किसी किसी को विशेष ऐश्वर्यमयी भक्ति और किसी किसी को प्रेमयी भक्ति में भी थोड़ा सा स्पर्श करा देते हैं, ये दिखलाए। किंतु साधकों में आवेश होना चाहिए, जैसे पुतना का आवेश, अघासुर का आवेश, शिशुपाल का आवेश, जरासंध का आवेश, ऐसे आवेश होना चाहिए। कमानुगा भक्ति में भी वैसे आवेश हो, तब तो ये चीजें होगी। दूसरी बात, हमने रागानुगा का ये दिखलाया कि कैसे उसको ग्रहण करते हैं, उस लीला कृष्ण को कैसे दर्शन करते हैं। उनका लक्ष्य पूतना पर नहीं रह करके उनका लक्ष्य क्या होता है, यशोदा मैया के भावों को रागानुगा लेते हैं। विधि मार्ग वाले लोग अधिकांश पूतना इत्यादि के भावों को देख करके अपने दोषों को दूर करने के लिए वो बस विधि भक्ति के द्वारा चेष्टा करते हैं, वो यशोदा मैया के भावों के प्रति प्रभावित नहीं होते। उन्हीं लोगों के लिए ये कहा गया, ओहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसया पाए अप असाध्वि लेभे गति धात्युचितांत तो अन्नं कं वा दयालु शरणम। अरे पुतने जैसी राक्षसी को जो कि स्तनपान के द्वारा समस्त शिशुओं को हत्या करने वाली, और उसको भी मारने के लिए गई कृष्ण को, और कृष्ण ने उनका स्तनपान करके उसको धातु उचित गति। अब यहाँ पर जो वैदिक भक्ति वाले साधक हैं उसको ये देखेंगे, अरे पूतने जैसी राक्षसी को मार करके उसको पवित्र बना करके धातु उचित गति दिया, तो हम भी ऐसा करेंगे तो हमारे समस्त अनर्थ अपराध दूर हो जाएंगे और आत्यंतिक दुख निवृत्ति होकर के हमको भक्ति मिल सकती है, बस इतना ही देखेंगे। रागानुगा भक्त ये नहीं देखेंगे, उसके तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं जाएगी। उनकी दृष्टि किधर जाएगी, यशोदा में, यशोदा मैया की स्थिति क्या है। असुरों के आने से यशोदा मैया कृष्ण को देख करके उस समय उनकी क्या स्थिति है, जैसे कि पूतना आई अघासुर बकासुर के साथ में, एक तो ये है ना, जब उस समय उनकी क्या स्थिति होती है, सेंसलेस हो जाती है और तरह तरह के विकार उनमें आ जाते हैं। किंतु जिस समय में ये असुर लोग नहीं आते हैं, उन दामोदर लीला में या फल विक्रयणी की या शंकर जी जब आते हैं ब्रज में, तब उनकी क्या दशा होती है। ये पूतना के समय में जब यशोदा जी की ऐसी स्थिति है, और दामबंधन लीला में कृष्ण के प्रति उनकी भावना क्या होती है, ये सबको दिखलाया गया बिना असुरों के। ये नैमित्तिक लीलाएं हैं असुर मारण इत्यादि में, इनमें यशोदा जी का भाव एक तरह का होता है, किंतु दामोदर बंधन इत्यादि जो लीलाएं हैं, जो प्रेम का एकदम प्रवाह, उच्छ्वास प्रवाह है, उनमें उनका भाव कैसा होता है। इसलिए कृष्ण को जब बंधन करती हैं, पसीने से तरबर हो जाती हैं, केवल मात्र अपना पुत्र मानती हैं, और उस समय के इन भावों को देख करके सुखदेव गोस्वामी जी से रहा नहीं जाता, और वो तब क्या कहते हैं, नंदस्तु अक्रूत ब्रह्मन सेव एव महोदयम महाभागा जस्तरम, ये कहा ने? जब उसको पुतना को मारा, उस समय में यशोदा जी का भाग्य नंद जी का भाग्य नहीं वर्णन किया, क्यों, उनके लिए वो गौण चीज है, बहुत गौण चीज, ये नमित लीला का वो भाव है। किसी को कष्ट दूर कर देना, किसी को शासन कर देना, ये कृष्ण की ऐश्वर्यमय लीला है, इससे उनका वो संबंध, इससे वो प्रभावित नहीं होते सुखदेव गोस्वामी। वो कब, अरे वो जो सर्वेश्वर होते हुए भी यशोदा जी अपने प्रेम में पककर और ऐसे पर ब्रह्म को भी तारण और भर्षण करती हैं, शासन करती हैं, और कृष्ण भी रोने लगते हैं, सचमुच में रोने लगते हैं, ये यशोदा का प्रश्न। और कृष्ण उनका स्तनपान करने आते हैं और वो मना करती हैं, नहीं तुम बंदर बंधु चंचल और नहीं जाने क्या चोर इत्यादि कहती हैं उनको। उसमें इनका यह प्रेम देखने को मिलता है, उस समय में उनके स्थायी भाव वात्सल्य के ऊपर में विभाव अनुभाव सात्विक और व्यभिचारी भाव बहुत ऊंची स्थिति तक, सख्य से भी बहुत उन्नत किस अवस्था में दिखते हैं, धुमाई ज्वलित दीप्त उदीप्त एवं दीप्त तक आ जाएगा, सुदीप्त गोपी में होगा, यहां तक आ जाता है, आंख से आंसू आने लगते हैं झरझर, शरीर कांपने लग जाते हैं। कृष्ण को पेड़ में से, जबकि दोनों पेड़ गिर गए और उस समय कृष्ण थोड़े से के लिए बच गए, और नंद बाबा उनको पुचकार रहे हैं, कृष्ण रो रहे हैं, यशोदा मैया जी काठ हो गई, लकड़ी निर्जीव जैसे हो गई, स्तंभ, ये सखाओं में इतना नहीं होगा, उनमें ऐसा नहीं होगा, आंसू भी सूख गए, आंसू गिरना एक विकार है अष्टभाव में से, क्या है, अशुभ पुलक कंप रोमांच, तो इसमें भी दीप्त तक चला गया, जो सखाओं तक में भी नहीं होता है। इसलिए यशोदा जी का ये रागानुगा भक्त लोग वो लक्ष्य करते हैं, इससे भी अधिक कब लक्ष्य करते हैं, कृष्ण वनगमन करते हैं और गोपियां उनको उनका वो विरह वर्णन करती हैं, वर्णन क्या धीरे धीरे कुसमित बनराज सुस्मि भृंग विकल घुष्ट सरल सहिम महिधम मधुपत अवगाचार्यन गा सह पशुपाल बलस्कूजे। उस समय का वर्णन वो गोपियां करती हैं, अपनतां फलमिदं न परम विदाम, आंखों की परम सार्थकता है। कृष्ण जब सखाओं के साथ में गायों को चराते चराते एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करते हैं, और उस समय उनके अधर पर मुरली भी विराजित रहती है, बलदेव जी उनके आगे आगे चल रहे हैं, सखा लोग उनको जय ध्वनि करते हुए उनके साथ में चल रहे हैं, और वो कृष्ण अपने आंखों से श्रीमती राधिका जी के तरफ में देख रहे हैं, और गोपियां अपने आंखों से उनकी अर्चन कर रही हैं, नैनोत पलाचित तनुम गो गो प्रसंघावृतम गोविंदम कलबेरुवादन परम दिव्यांगम भूषावज। उस समय में ये कौन देख रहा है, गोपियां देख, कैसी इनकी स्थिति हो रही है, जो यशोदा जी की दीप्त थी, और इनकी कैसी होती है अष्टशास्त्री सुदीप्त, अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। इस तरह से और भी आगे इससे आगे गोपियों का वर्णन करती हैं। गोपियां वो हिरणों को भी बराहपीड़म के बाद में ये है धन्यास मूढ़ मतो, और अंत में अपने भावों को छिपाने की कोशिश करते हुए जब नहीं छिपता है नद्यो सदा उपधार्य मुकुंद गीता, नदियों का भाव वर्णन करने लगती हैं कि ये नदियां नदियों में भी काम की उद्दीपना होती है। कृष्ण गोचारण करते उनके तट पर खड़े होकर के बांसुरी बजाते हैं, ये कौन देख रहा है? यशोदा मैया नहीं देखेंगे और लोग नहीं देखेंगे, सखा लोग नहीं देखेंगे, ये कौन कौन देखेगा? केवल उस रस की उपासिका जो मधुर रस की वो देखेंगी गोपियां, वो देख रही हैं। कृष्ण नहीं है वहां, भाव नेत्र से वहां देख रही हैं और देख रही हैं क्या जन ये जमुना जी कृष्ण को देख करके अत्यंत भाव विधुर हो गई, कमल का उपहार लेकर के और उनका आलिंगन करने के लिए बस तक्षल तक आई। कृष्ण निर्विकार रहने पर वो लज्जित होकर के पैरों के अंदर में जाकर के फूलों का उपहार देने लगी, अपने हृदय को समर्पण करने लगी और उस समय उनके भाव व्यक्त हो गए। व्यक्त होते ही फिर वो लज्जित होकर के और छिपाने लगी दूसरे श्लोकों से, आकाश के बादलों से। क्या श्लोक है वो? आकाश के बाद धन्यास नद सदाप धार्ज मुकुंद गीत नद्दा सदाप धार्ज मुकुंद गीत आवर्त लक्षित मनोभव वैकुंदेगा आलिंगन स्थगित उर्म भये मुरारु गृहणंति पाद जुगलम कमलोपार दृष्ट्वा तपे बज पशून सहाराम गोपी संचारयंत मन वेणु मदीरयंत प्रेम प्रबिद्ध उदता कुसुमावली दि शक्र पदार्थ सब उपसाद आदि पत्र देखा। अब कहने लगी आ ये सखाओं के साथ में कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं और उनकी परम बंधु सखा कौन? आकाश के बादल सूर्य को ढक देते हैं और नन्ही नन्ही अपनी अश्रुबुंद रूपी अत्यंत कोमल और सुशीतल जल से कृष्ण के ऊपर में वर्षा बरसाते हैं, आनंद का अश्रु प्रवाहित करते हैं। धन्य ये आकाश के बादल, यदि मर करके हम आकाश के बादल भी हो जाती तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। ये कहते कहते ऐसा भाव उमड़ा जैसे उनका भाव सब जो छिपा कर रखा था वो पूर्ण रूप से उघड़ गया। पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब जरा ऐसे ये कैसे किस समय के ये सब कृष्ण भी गोचार में जा रहे हैं और वो कृष्ण नहीं है तो भी कृष्ण को देख रही हैं सामने और ऐसे समस्त भावों का वर्णन कर रही हैं। कौन? गोपियां। यशोदा जी से तुलना करो तो देखो यशोदा जी में ऐसे प्रेम के ऊंचे भाव सब नहीं देखे जाएंगे, वात्सल्य तक का भाव देखा जाएगा। और इसी ये तो मिलन में विरह में है और मिलन में और अद्भुत दशा, मिलन में और अद्भुत दशा, भूल जाती हैं। कब? चले चलो वहां नंदगांव और बरसाना के बीच में प्रेम सरोवर पर प्रेम वैचित्र अद्भुत दशा, ये किसी में नहीं होगा। किसी किसी में होगा भी स्वकीय नायिकाओं में जैसे द्वारका वाली महिषियों में, तो बहुत थोड़ा सुदीप्त नहीं होगा, उदीप्त भी नहीं होगा, धुमाइत हो सकता है कुछ। ऐसे सुंदर सुंदर भाव उनके हृदय में। और विरह में तो लीला इत्यादि का भी अनुकरण करते हैं, यमें ही कृष्ण हो गई और मूर्छित होकर के गिर पड़ती हैं। उद्धव जी इसको देख करके पागल होते, यशोदा जी को देखा, उद्धव जी ने नंद बाबा को देखा किंतु इतने विस्मित नहीं हुए, रात भर उनसे बातचीत करते रहे। और गोपियों का भाव देखा, आप लोगों ने विरह से हमको धन्य बना दिया, हमारा जीवन धन्य उठा, बहुत अनुग्रह आपका हुआ जो विरह में विरहीन मैं अनुग्रह किया आप लोगों ने, क्या जो आपके इन भावों को मैं देख सका, समझ तो नहीं सका किंतु बहुत दूर से देख सका इन भावों का, किन भावों को? मधुपकित वंध हो मास्क सांग शपथ में மிகழிவு கப்பென்றம் பித்புதே லுப்த தர்மா. யதன் சைத லீலா கரணி பயூஷ பிப்ருத் சப் மே. ये सब पराकाष्ठा है दीपालंभव की, संभोग लीला की पराकाष्ठा है रास लीला, और ये सब गोपियों में जो देखे गए और नत्र कहीं नहीं देखा. रगानु का साधक ये सब लक्ष्य करेगा नित्य लीलाओं को भी छोड़ करके, और इसमें जसोदा जी का भाव जिसको अधिकार है, सखा का भाव और उनका भाव, और वही भाव से उसी भाव को लेकर के, वो भाव नहीं माने वही व्यक्ति नहीं, जसोदा नहीं, नंद बाबा नहीं, गोपियां नहीं, राधा ललिता विशाखा नहीं, उनकी अनुगत किन करी होकर के इन भावों को ग्रहण करने की चेष्टा करेगा रागानुगा भक्त. उधर में ध्यान ही नहीं जाएगा उस सब लीला. भजी भक्ति वालों का लोगों का जाए, जब पुतना को भी उत्तम गति दे दिया बस यही. अरे बड़े आश्चर्य की बात है, उनको शिशुपाल को मारा और उसकी ज्योति उनके चरणों में विलीन हो गई. ये तो आश्चर्य की बात. अगासुर को मारा, जब तक कृष्ण उसके पेट में थे तब तक नहीं, वो आकाश में मड़राती रही उसकी ज्योति, और जो ही कृष्ण उसके फाड़ करके निकल आए और तभी वो ज्योति मड़राती है उनके चरणों में देकर के. ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे अगासुर जैसे घृणित प्राणी को, हिंसा प्रिय प्राणी को इन्होंने सारूप मुक्ति इत्यादि दे दी. उसने तो कोई साधन नहीं किया, कैसे दे दी? अरे पुतना के संबंध से केवल दे दिया, पुतना की का भाई है ये, उसको इसको ऐसी गति दे दी. ऐसे दयाल ये वैदिक भक्तों का लक्ष्य वहां तक जाएगा, और रागानुगा का जाएगा उधर में नहीं जाएगा, उन लोगों के भावों की तरफ में, विशेष करके इन भावों में जो रूपानुग होंगे, इन भावों की तरफ, गोपियों का जो भाव मैंने बतलाया. तो इन लीलाओं को देख करके विविध प्रकार के भक्तों की विविध प्रकार की ये सब उद्दीपनाएं होती हैं. अब हम थोड़ा सा इसमें चलें, जो बड़ी भक्त हैं, जो भगवान का भजन करना चाहते हैं, उद्देश्य तो यह है कि कृष्ण का हम भजन करके कृष्ण की सेवा प्राप्त करेंगे. ये भी जानते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, जीव स्वरूप है, ये शास्त्र में पढ़े हैं या सुने हैं. अनुभूति इत्यादि कुछ नहीं है, अनुभूति नहीं है, अभी मध्यम अधिकार में नहीं आए हैं, ठीक ठीक, विचार करने की भी क्षमता भी नहीं आई है. इन लोगों में अनर्थ बहुत से रहते हैं, इसी के लिए बतलाया वो अनंत में, देखें वो क्या है. तो लोगों के लिए पहले छह वेग है, रागानुगा भक्तों के लिए नहीं लिखा गया. क्यों? उनका कहां से आरंभ हुआ? रुचि से, इसलिए ये सब अपराध ये सब नहीं. ये तो उनके लिए है जो कि पूर्व सुकृति से वैष्णव का संग हुआ, और वैष्णव के संग होने पर द्वितीय बार संग होने के बाद में गुरु पदाश्रय हुआ, और अविद्वत प्रतीति रूपी दीक्षा हुई इन लोगों की, अनुष्ठानी इनकी दीक्षा हुई. अनुष्ठानी की दीक्षा का भी महत्व है, ऐसा नहीं कि महत्वहीन है, किंतु उसकी तुलना में नहीं है, ये बात ठीक है इसका भी. तो उन लोगों में अभी अनर्थ है, इसलिए साधु संघ गुरु पदाश्रय, और गुरु पदाश्रय के बाद में विश्वम्भरेण गुरु सेवा, विश्वम्भ रूप में गुरु सेवा करने लगे. इसका मतलब है कि उनके आदेश इत्यादि को पालन करते हैं और उनकी सेवा करते हैं. विषम्भ माने क्या? विगत संभव. संभव माने क्या? उनके प्रति संभ्रम भाव, अपना मान करके मेरे हैं. लौकिक शब्द बंधुवत गुरु को माने, किंतु भाई उसमें अभी उस अधिकार में उनके प्रति संभ्रम बुद्धि रहेगी ही, किंतु तो भी थोड़ा सा लौकिक संबंधवत भाव रह करके सेवा होगी, जैसे गोविंद जी महाप्रभु जी की सेवा करते थे, ईश्वरपुरी पाद जी की सेवा करते थे, गोविंद की ईश्वरपुरी पाद की सेवा और ईश्वरपुरी पाद की माधवेंद्रपुरी की सेवा में बहुत अंतर होगा, है आ रहा है समझ में? फट आई टोल आई सर हाथ है। अच्छा हाँ, क्या बतला रहा था? ईश्वरपुरी के पाद के गुरु भ्राता रामचंद्रपुरी, वो भी सेवा करता था। गुरु जी आप क्यों रो रहे हैं? सन्यासी होकर के सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करने वाले आप रोते हैं ने? आपको धैर्य धारण करना चाहिए। और ईश्वरपुरी प्यार क्या कर रहे हैं? उनकी टट्टी से आरंभ कर सब कुछ साफ कर रहे हैं और उनकी अंतरंग मनोभीष्ट सेवा कर रहे हैं, उनको दीपन जल होने वाला है। वे सब श्लोकों को क्या श्लोक पाठ कर रहे हैं? ऐ दीन दयाद्रणा हे मथुरा नाथ कदा अवलोक्य से हृदय तदा आलोक का तरम दई तभ्राम केम करम्यम। इसके श्लोक ऐसे परलल श्लोक पर श्लोक करते हैं और उनके आंखों से आंसू झर रहे हैं। रामचंद्र के लिए क्या कहा? निकल जाओ यहां से, तुम्हारा मुख दर्शन नहीं कर रहा, तुम हट जाओ। और ईश्वरपुरी प्याद के लिए क्या कर रहे? अंतरंग सेवा उनकी बदला। ये सब समझ करके अपने अधिकार के अनुसार में गुरु जी की सेवा लोग करें। यदि किसी का ऐसा गुरु और वैष्णव मिलने का सौभाग्य है तो ये संसार में समझो ये सबसे बड़ा भारी सौभाग्य है। इसलिए दृष्ट ही स्वभाव जनितरि वपुषश्च दोषी न प्राकृत न, ये नहीं, इसके बाद वाला क्या है? कृष्ण ही तेजस बाकी मनसाद्रियत दीक्षास्तेत प्रणत भीष्य भजन तमीशम सुश्रया भजन विज्ञमन अन्यमन निंदाद सब सुन हृदय में सति संगलब्धा। कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियतां कुतोपि यदि लभ्यते तत्र मूल्यमपि मे कलम जन्म कोटि सुकृत्न लभ्यते। ऐसा कोई भक्त मिल जाए तो क्या करो? अपने प्राणों को हथेली में रखकर उनकी चरण की सेवा में लगाओ। कोटि कोटि सिर देने से भी यदि ऐसे वैष्णव की गुरु की सेवा होती है तो सस्ता ही समझो। प्रेम इतना सस्ता नहीं है, इसलिए उसका जो मूल्य है वो भी वैसे ही होगा। और जो ऐसी सेवा नहीं कर सकेगा, ऐसा गुरु भी मिलना बड़ा भारी कठिन, और ऐसी सेवा भी नहीं करेगा तो वो कैसे मिलेगा? इसलिए भारी बड़े सौभाग्य की बात है ऐसा। तब फिर उसका क्या करेगा? इसके बाद में विशंभर से जब सेवा करेगा तो गुरु जी उसको क्या करेंगे? अन्य व्यतिरेकाभ्याम वो जो भक्ति के विचार हैं उनको बतलाएंगे। तब वो समझ करके अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम उत्तर उत्तमम भक्ति रूपम उत्तम भक्ति का अनुशीलन करेगा। किंतु है अभी कनिष्ठ अधिकारी या अभी मध्यम अधिकारी के निम्न श्रेणी में, किंतु उत्तम भक्ति का अनुशीलन कर रहा है। उसकी पहली भक्ति जो है उत्तम नहीं होगी जब तक उसमें अन्नाभिलाष ज्ञान कर्म इत्यादि है। वो कब होगा? जब ये छूट जाएगा, उत्तम वैष्णवों का संग होता जाएगा, क्रमशः रुचि आसक्ति भाव उत्पन्न होंगे, तब उत्तम भक्ति जाकर के संभव है। इसलिए जो लोग सब समय अनखों में ही व्यस्त हैं उसको दूर करने में, और जो व्यक्ति इन सबके अनुशीलन में है, दोनों में संग में कौन सा अच्छा है ये देखा, उनको इससे कोई संबंध नहीं। दिन रात बस कृष्ण भक्ति में वो लगे हुए हैं, अनुशीलन में, भावों के अनुशीलन में। इसलिए ऐसे वैष्णवों का संग मिले तो हम लोगों के लिए परम लाभदायी है। उस समय उत्तम भक्ति का अनुशीलन करते 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 पहले अन्य अभिलाष छूटेगा, अन्नाभिलाष और अन्नाभिलाषिता में हमने बहुत बार बतलाया है ये क्या पार्थक्य है। अन्नाभिलाषिता शून्य कहते हैं किसको और अन्नाभिलाष शून्य किसको कहते हैं, कोई बतलाएगा? रामचंद्र बतला सकते हैं, बतलाओ तो देखें। अन्नाभिलाषिता अन्नाभिलाषिता शून्य एवं अन्नाभिलाष शून्य पर condition and senses and is that he is wanting anything from his Krishna or anyone, then it will be annabhilas and that is sunna or abhilas sunna. But when anyone is in natural condition, not in natural condition, kya आकस्मिक उसका परिवर्तन स्वभाव का हो, इमरजेंसी एंड ही वांट समथिंग, ओ कृष्णा सेव मी, दिस इज अन्नाभिलाषिता शून्य। दिस इज सो अन्नाभिलाषिता शून्य इट हैज बीन टोल्ड, नो अभिलाष हियर इन naturally stage I know, but in emergency has something, so it has been granted that concession it has been given. अब इसको समझो, जब कोई भक्त साधक साधारण स्टेज में हो जैसे अभी हम लोग हैं, विचार करने की क्षमता है, कोई विपत्ति विशेष नहीं आई और उस समय में स्वभाव उसका ठीक है और उस समय में कहता है हे कृष्ण हमारी विपत्तियां जो आएंगी उसे बचाइए, हमको कुछ पैसे की जरूरत है, हमको ये चीज की जरूरत है, हमारी विवाह करने की बड़ी लालसा है, हमें बच्चे की लालसा है, अपनी प्रतिष्ठा की लालसा है, धन जन न धनम न जन्म सुंदरी कवितावाद जगदीश काम, ये सबकी कामना है स्वाभाविक स्टेज में, तब ये क्या होगा? अन्नाभिलाषिता शून्य, स्वाभाविक रूप में नहीं होना चाहिए, और जब स्वाभाविक रूप में है और ये है तब तो अन्नाभिलाषी है। विशेष परिस्थिति में जब प्राण के संकट हो आए और उस समय में उसका स्वभाव बदल गया और उस समय में एक सेकेंड निकले हे प्रभु रक्षा कीजिए आ गया, तो ये अन्नाभिलाषिता शून्य ही कहा जाएगा। इसलिए स्वाभाविक रूप में जैसे हम अभी इस स्थिति में है, ज्ञान है और सब कुछ है, किंतु इस समय में हम कुछ भी डिजायर करते हैं, इच्छा करते हैं, तो भाई ये भक्ति के लिए बाधक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विशेष स्थिति जैसे अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करना चाहिए कभी भी नहीं, वैष्णव लोग जो हो हैं दे शुड नॉट ट्राई टू डू श्राद्ध संस्कार एंड ऑल अदर थिंग, कभी नहीं करो। क्यों? यदि वो भगवान का भजन किया हो कोई वैष्णव, तो नाम के आभास से ही तो उसका उद्धार हो गया है, फिर उसके लिए क्या करने की जरूरत है? इफ ए वैष्णव हैज लेफ्ट हिज बॉडी and you are chanting always Krishna, always and always, and he was hearing the pastimes of Krishna ki kathaon ko sun raha tha, shravanam kirtan mein shravanam ityadi karta tha, aur wo sharir ko tyag diya, uske liye jadi koi vyakti shraddha karta hai to wo aparadh ka bhagi hai, aise vyaktiyon ka shraddha nahi hona chahiye। Athava jadi कोई वैष्णव है मध्यम अधिकारी या दूसरा, और उसके पूर्वज लोग भजन नहीं करते थे या कोई नहीं भजन करता था, और वो उसका पिता भजन नहीं करता था किंतु मर गया, अब इसको क्या करना चाहिए? इसको भी साधन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यदि करता है तो वो क्या है? वैष्णव अपराध है। क्यों? यदि वो लौकिक जैसा कि साध होता भूत प्रेत वाला साध करता है तो वो भक्ति का विरोधी है। यदि करना भी है तो क्या करे, अधिक से अधिक भोग देकर के उनको निवेद्य करे। मध्यम अधिकार का पिता माता भी कितने सात जन्मों तक का उनका उद्धार हो जाता है, हो जाता है ना, तो फिर इसको विश्वास कहां रहा, विश्वास की कमी, भगवान के नाम पर विश्वास नहीं रहा। किंतु कोई व्यक्ति वैष्णव रीति से जैसा बतलाया गया है ठाकुर जी का भोग अर्पण करके उसको अर्पण कर रहा है, किस लिए उसको उसमें विश्वास नहीं है, किसमें, लौकिक साधना या किसी साधन में, फिर भी वो लोक संग्रह के लिए दिखलाने के लिए क्या करता है कि भाई ले आओ।